21वां अध्याय महाराज पृथु द्वारा उपदेश श्लोक संख्या 33। तमेव यूयं भजतात्मवृत्तिभिः मनो वचः काय गुणैः स्वकर्मभिः अमायनः कामदुघाङ्घ्रिपङ्कजम् यथाधिकारावसितार्थसिद्धयः। प्राज ने अपनी प्रजा को उपदेश दिया, तुम सबों को अपने मन, वचन, देह तथा कर्मों के फल सहित सदैव खुले मन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तुम सब अपनी सामर्थ्य तथा वृत्ति परक कार्यों के अनुसार पूरे विश्वास तथा बिना हिचक के श्री भगवान के चरण कमल की सेवा में संलग्न रहो, तब तुम्हें निश्चय ही अपने अपने जीवन उद्देश्य प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होगी। तात्पर्य, जैसा कि भगवद गीता के 18वें अध्याय में कहा गया है, स्वकर्मणा तभ्यर्च्य, मनुष्य को अपने वृत्तिपरक कार्यों द्वारा भगवान की पूजा करनी होती है। इससे चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों के सिद्धांत को स्वीकार करना पड़ता है। अतः पृथु महाराज कहते हैं, गुणहि स्वकर्मभिः। इस पदांश की व्याख्या भगवद गीता में इस प्रकार प्राप्त है, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। श्री भगवान द्वारा प्राकृतिक गुणों तथा उन गुणों के अंतर्गत विशिष्ट कर्तव्यों के अनुसार चारों जातियां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र बनाई गई। जो व्यक्ति सतोगुणी होता है वह निश्चित रूप से अन्यों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होता है। अतः यह ब्राह्मण के कार्य सत्य बोलना, इंद्रियों का संयम, मन का संयम, स्वच्छता, सहिष्णुता, आत्मज्ञान तथा भक्ति का ज्ञान कर सकता है। इस प्रकार यदि वह सच्चे ब्राह्मण की भांति भगवान की सेवा करता है तो उसके जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाता है। इसी प्रकार क्षत्रिय के कर्तव्य हैं नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना, दान देना, राजकाज में वैदिक व्यवस्था का पालन तथा यदि शत्रु आक्रमण कर दे तो निर्भीक होकर लड़ना। इस प्रकार एक क्षत्रिय अपने कार्यों से भगवान को प्रसन्न कर सकता है। इसी तरह वैश्य अपने कर्मों को करता हुआ अन्न उपजाकर गौओं की सुरक्षा करके तथा अधिक कृषि उत्पादन होने पर आवश्यक व्यापार द्वारा भगवान को प्रसन्न कर सकता है। क्योंकि शूद्रों के अधिक बुद्धि नहीं होती, अतः उन्हें सामाजिक जीवन के उच्चतर स्तरों की सेवा करने में श्रमिक की भांति लगे रहना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य श्री भगवान को अपने मन, वचन, कर्म से प्रसन्न करना होना चाहिए। जिस प्रकार शरीर के चार विभाग हैं, सर, हाथ, पेट तथा पांव, और उसी प्रकार मानव समाज भी मनुष्यों के गुणों तथा कर्मों के अनुसार चार श्रेणियों में बटा हुआ है। इस तरह ब्राह्मणों को सिर का, क्षत्रियों को भुजाओं का, वैश्यों को पेट का तथा शूद्रों को पैरों का कार्य करना पड़ता है। जीवन के निर्दिष्ट कर्मों को करते समय न कोई छोटा है न कोई बड़ा, हाँ इनमें उच्चतर तथा निम्नतर जैसे विभाग होते हैं, किंतु भगवान को प्रसन्न करने का एकमात्र स्वार्थ होने से उनमें कोई अंतर नहीं होता। यहां यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि जब ब्रह्मा, शिव तथा अन्य बड़े बड़े देवता भगवान की पूजा करते हैं तो फिर इस लोक का सामान्य व्यक्ति उनकी सेवा किस प्रकार कर सकता है। इसकी व्याख्या पृथु महाराज ने यथा अधिकार शब्द के प्रयोग द्वारा की है, जिसका अर्थ है अपने सामर्थ्य के अनुसार। यदि कोई निष्ठापूर्वक अपना कर्तव्य पूरा करे तो वही पर्याप्त होगा। उसे न तो ब्रह्मा बनने की आवश्यकता है, न शिव, इंद्र, चैतन्य या रामानुजाचार्य, जिनकी सामर्थ्य हम सबों से निश्चय ही बहुत अधिक है। यहां तक कि गुणों के अनुसार सबसे नीचे स्थित शूद्र भी वही सफलता प्राप्त कर सकता है। कोई भी व्यक्ति भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है यदि उसमें द्विधा न रहे। यहां यह बताया गया है कि मनुष्य को स्पष्ट वक्ता तथा खुले दिमाग वाला अमायन होना चाहिए। भक्ति में सफलता प्राप्त करने के लिए जीवन में निम्न स्तर पर स्थान होना कोई अयोग्यता नहीं है। इसके लिए एकमात्र योग्यता है कि वह निष्कपट हो तथा उसमें हिचक न हो। फिर चाहे वह ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र, तब वह गुरु के निर्देशन में अपना वृत्तिपरक कर्म करता हुआ जीवन की उच्चतम सफलता प्राप्त कर सकता है। भगवद गीता में 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान ने स्वयं पुष्टि की है, स्त्रियो वैश्यास्त तथा शूद्रास्तेपि यान्ति पराम गतिम्। कोई ब्राह्मण हो या कि क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा पतित स्त्री, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि कोई शरीर, मन तथा बुद्धि से गंभीरता पूर्वक भक्ति में प्रवृत्त होता है तो वह अवश्य ही भगवान के धाम जाता है। भगवान के चरण कमलों को काम दुघांघ्री पंकजम कहा गया है, क्योंकि वे प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा करने में समर्थ हैं। एक भक्त अपने इसी जीवन में सुखी रहता है, क्योंकि इस संसार में हमारी अनेक आवश्यकताएं हैं, किंतु भक्त की सारी आवश्यकताएं पूरी हुई रहती हैं। और अंत में जब वह शरीर त्यागता है तो वह बिना किसी संदेह के भगवान के धाम को जाता है। अनुवाद दोहराइएगा। पृथु महाराज ने अपनी प्रजा को दिया तुम राम। हरे हरे कृष्ण। आदर्श राजा कैसे होना चाहिए, पृथु महाराज अपने व्यवहार से यहां सिखला रहे हैं। अपने प्रजा को भक्ति करने का उपदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हें खुले हृदय से, खुले मन से, बिना हिचक के पूरी तरह से भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए। इससे तुम्हारी मनुष्य जीवन की सफलता होगी। ऋषभदेव महाराज श्रीमद् भागवत में बताते हैं, गुरुर न सस्यात्, स्वजनों न सस्यात्, दैवीं न तत्स्यान्, न पिता न सस्यान्, जननी न सस्यान्, पति न सस्यान्, न मोचेत समुप्रेत मृत्युम। हम इस संसार में गुरु नहीं बन सकते या गुरु बनने का अधिकार नहीं है, स्वजन या रिश्तेदार बनने का अधिकार हमें नहीं है, या जननी माता बनने का अधिकार नहीं है, पिता बनने का अधिकार नहीं है, पति बनने का अधिकार नहीं है, जब तक कि हमारे अंदर, हमारे ऊपर जो व्यक्ति निर्भर हैं उनको हम जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा देने के लिए हम योग्य नहीं बने। तो पृथु महाराज दिखा रहे हैं कि योग्यता ये कैसे मिलती है। खुद जब आदमी भक्त हो जाता है तो दूसरों को भक्ति के बारे में उपदेश दे सकता है। इस तरह से पृथु महाराज ने अपने वचनों से, अपने स्तुतियों से, अपने उपदेशों से साफ साफ प्रमाण दिया है कि वो एक आदर्श राजा है। आदर्श राजा वो होता है जो न केवल उपदेश देता है लेकिन स्वयं आचरण भी करता है और प्रजा की रक्षा के लिए स्वयं प्रजा के बीच में जाकर जो उचित कार्य है वो करता है। रक्षा न केवल दूसरों के शत्रु के तलवार से या उनके धनुष बाण से, लेकिन रक्षा अधार्मिक कार्यों से, उनकी रक्षा करनी चाहिए पाप कर्मों से, ये अधिक रक्षा है। उसी तरह से हम कह सकते हैं कि हमें सारे भक्तों की रक्षा करनी चाहिए। शारीरिक दृष्टि से रक्षा तो करनी ही है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि की रक्षा जो है ये अधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि शरीर का पतन तो एक न एक दिन ही होना ही है। इसलिए जो व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से अपनी रक्षा करने का प्रयास करता है तो वो वास्तव में उसको रक्षा या सुरक्षा कहते हैं। पृथु महाराज आदर्श राजा होने के नाते बतला रहे हैं कि सबको निष्कपट रहना चाहिए। जब किसी व्यक्ति के अंदर छल कपट की भावना होती है तो वो भक्ति नहीं कर सकता, ये वास्तव में सच बात है। वो टिक नहीं पाएगा भक्ति में जब तक कि वो खुले हृदय से नहीं आएगा, दूसरों के सामने नम्र नहीं बनेगा, तब तक वो भक्ति नहीं कर पाएगा। क्योंकि भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए अधिकार चाहिए, जिस तरह से किसी भी कार्य संपन्न करने के लिए अधिकार चाहिए। कॉलेज में भर्ती होना है, अधिकार चाहिए। परीक्षा में पास होना है, अधिकार चाहिए। विवाह करना है, अधिकार चाहिए। ब्रह्मचारी बनना है, अधिकार चाहिए। जो भी कार्य हम करने जाएं संसार में, हर एक चीज के लिए अधिकार चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। तो इसी तरह से भक्ति करनी है तो कोई अधिकार चाहिए। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते मोहद्बन्धु निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जिनके पाप नष्ट हो चुके हैं, जिनके सुकृति बढ़ चुकी है, पर्याप्त मात्रा में है, वो दृढ़ता से भक्ति कर सकता है भगवान श्री कृष्ण की। लेकिन फिर भी जब तक वो व्यक्ति अपने आप को नम्र नहीं बनाता, भगवान के सामने अपना हृदय नहीं खोलता, तब तक वो भक्ति नहीं कर पाएगा। भले हम संसार के सामने अपना हृदय नहीं खोल पाए, लेकिन भगवान के सामने आकर तो खोल सकते हैं। और भगवान कहते हैं ठीक है, मेरे सामने तो खोल रहे हो हृदय को, लेकिन भक्तों के सामने भी खोलना चाहिए। अगर भक्तों के सामने हमने कुछ अलग ही एक रूप अपना प्रस्तुत किया जो कि सत्य नहीं है, तो फिर उसमें भी भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए छल कपट से रहित रहकर बिना ईर्ष्या किए हुए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। यहां पर शब्द प्रयोग किए गए हैं मनोवचः काया, कि हमें अपने मन से, अपने वचनों से, अपने शरीर से भगवान की सेवा करनी चाहिए। वर्णाश्रम द्वारा, अपने गुणों द्वारा। अब भगवान श्री कृष्ण बता ही रहे हैं, यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। जो भी तुम करते हो, जो भी तुम खाते हो, पीते हो, दान देते हो, तपस्या करते हो, सब मेरे लिए करना। इसलिए जो व्यक्ति वर्णाश्रम स्थित होकर ये फल भगवान को अर्पण करता है, ये भी भक्ति कही जाती है। वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेन परह पुमान विष्णुर आराध्यते पंथा नान्यत् तत्तोष कारणम्। तो अपने अपने वर्ण और आश्रम के कर्तव्यों को सभी को जानना चाहिए और उन कर्तव्यों को संपन्न करके भगवान को वो फल अर्पण करने चाहिए। लेकिन केवल ऐसे फल अर्पण करना उतना काफी नहीं है। आदमी जब तक आध्यात्मिक जीवन में प्रगतिशील नहीं माना जाता है, तब तक जब तक कि उसके हृदय में भक्ति नहीं है, भगवान के प्रति प्रेम नहीं है। जिस तरह से हमारे समाज में भी कई तरह के व्यक्ति होते हैं, एक तरह के व्यक्ति होते हैं जो कि देश के नियमों का पालन नहीं करते, कानून जो होते हैं कानून को तोड़ते हैं। दूसरे तरह के व्यक्ति होते हैं जो कि कानून का पालन करते हैं लेकिन जबरदस्ती, उनकी इच्छा नहीं है लेकिन दंड मिलेगा अगर नहीं करेंगे, तो इस डर से नियम का पालन करते हैं, कर देते हैं, टैक्स वगैरह भरते हैं, सब करते हैं। और तीसरी श्रेणी का व्यक्ति वो है जो कि अपने सरकार से, देश से प्रेम करता है और प्रेम की वजह से सारे नियमों का पालन करता है। तो ठीक उसी तरह से ऐसे भी लोग हैं जो भगवान के नियमों का उल्लंघन करते हैं, पाप करते रहते हैं, वो तो सबसे नीच श्रेणी के हैं। बीच वाले में वो हैं जो नियमों का पालन तो करते हैं लेकिन कोई स्वार्थ के लिए, कोई कर्तव्य है इसलिए करते हैं, कोई प्रेम नहीं है, ऐसे कर्मकांडी होते हैं। कर्मकांड का पालन करके केवल निजी स्वार्थ को पूरा करते हैं, लेकिन इनसे ऊपर भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं जो सब कुछ केवल प्रेम की वजह से करते हैं। जब भक्ति होती है हृदय में, तब हमारे कर्मों के फल का अर्पण करना वास्तव में सफल हो जाता है। इसे मान लीजिए कोई व्यक्ति यह मंदिर में आता है और कोई दान देता है, लेकिन उसकी दान देने की भावना ठीक नहीं है, तो फिर वो दान इतना भक्त भी पसंद नहीं करेंगे और भगवान भी पसंद नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई दान देना चाहता है बड़ी नम्रता से, भक्ति भावना से, अपने आप को बिल्कुल एक तुच्छ व्यक्ति समझकर, तो फिर वो दान से भक्त भी प्रसन्न होते हैं, भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तो कार्य वही है दान देना, लेकिन भावना का कितना फर्क पड़ता है। उसी तरह से कर्मों के फल को अर्पण करना भगवान के प्रति, इसमें प्रेम चाहिए। ये अंतर होता है कर्म योग में और भक्ति योग में। भक्ति योग में भी हम वही करते हैं, कर्म करते हैं, फलों को अर्पण करते हैं, लेकिन भक्ति योग में प्रेम होता है। कर्म योग में केवल वो फलों को त्याग कर भगवान को अर्पण कर रहा है। इसलिए हमें चाहिए कि हम भक्त बने। भक्त बनने से हमारे सारे कर्म खुद ब खुद अर्पण हो जाते हैं। किस तरह से कर्मों के फल अर्पण करने चाहिए? एक साधारण इंद्र तृप्ति करने वाला आदमी जो होता है, सुबह उठता है, स्नान कर लेता है, दांत ब्रश कर लेता है, भोजन खा लेता है और फिर अपने दिन के कार्य में लग जाता है। क्यों करता है ये सब? क्योंकि उसका एक ही उद्देश्य होता है, इंद्र तृप्ति। जो कर्मकांडी व्यक्ति होता है, जो कर्मकांड करता है, तो वो भी यही कार्य करता है। सुबह उठता है, नहाता है, धोता है, खाता है, पीता है, अपने कार्य करता है, व्यवसाय करता है। वो क्यों करता है? देवी देवताओं को प्रसन्न करके कुछ भोग प्राप्त करने के लिए। तो ठीक उसी तरह से कृष्ण भक्त जो होते हैं वो भी ऐसे ही कार्य करते हैं। सुबह को उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अपने व्यवसाय में जाते हैं इत्यादि। लेकिन ये सारे कार्य क्यों करते हैं? केवल भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। तो इस तरह से श्री कृष्ण को हमें सब कुछ अर्पण करना चाहिए भक्ति भाव से। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में महाराज निमि को उपदेश दे रहे हैं नव योगेंद्र, और वो एक श्लोक कहते हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध है। उसके थोड़े थोड़े फिर बदल करके इस संसार में कई लोग बोलते हैं, इसको हमारे बाहर कर्मकांड में भी बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं समझते हैं। काय ने वाचा मन सेन्द्रिय वा बुद्ध्यात्मना वा अनुश्रुत स्वभावा करोम यद्यप सकलम परस्मै नारायणायति समर्पयाम। आप में से कितने लोग ये श्लोक जानते हैं? कितने लोगों ने घर में किए होंगे कर्म कांड करते समय, फिर हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, है ना? है ना, कर्मकांड में करते हैं ना ऐसा। लेकिन वास्तव में इसका मतलब क्या है, नारायण कौन है वो भी नहीं समझते। सब एक है, गणेश एक है, गणेश नारायण, गणेश जी की पूजा कर रहे हैं लेकिन अर्पण कर रहे हैं नारायण को, लेकिन मालूम नहीं कि नारायण और गणेश में अंतर है। तो इस तरह से ये श्लोक भागवत में आता है और इसका मतलब क्या है, काय ने वाचा मनस इंद्रियवा, काया अपने शरीर से, वाचा अपने वचन से, मनसा अपने मन से, इंद्रिय अपने इंद्रियों से, काय ने वाचा मनसे इंद्रिय बुद्ध्यात्मनावा, बुद्धि से प्रकृति स्वभाव जो हमारे गुण हैं, प्रकृति के अनुसार दिए हुए गुण हैं, उनसे करोम यत्यत, जो भी हम करोम करोत यत्यत, जो भी हम कार्य करते हैं, सकलम सारे कार्य परस्मै नारायण आयति समर्पयामि। तो हम भगवान श्री नारायण के प्रति समर्पित करते हैं उन कार्यों को। तो ये भावना होनी चाहिए कि सारे कार्य हम जो भी करते हैं, अगर इस तरह के कार्य करें कि हर व्यवसाय में घर में कि हम भगवान श्री कृष्ण के लिए नारायण के लिए कर रहे हैं, अपने घर को चला रहे हैं, रसोई घर में काम कर रहे हैं, घर को साफ कर रहे हैं, बच्चों का देखभाल कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, ये सब भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। ये भावना से अगर हम करेंगे, जैसे कि एक इंद्र तृप्ति वाला आदमी यही करता है अपने इंद्र तृप्ति के लिए, उसी तरह से हमें केवल केंद्र को बदलना है। कृष्ण हमेशा मन में ये भावना रहनी चाहिए कि ये कृष्ण का घर है, कृष्ण का व्यवसाय है, कृष्ण का शरीर है, कृष्ण का कुटुंब है, और उनकी सेवा के लिए हम ये सब कर रहे हैं। तो अपने बुद्धि को, मन को, वचन को, वाचा को लगाना भगवान के सेवा में, ये जरूरी तो है लेकिन इतना आसान नहीं। और जो व्यक्ति ये कर पाता है उसे मुक्त पुरुष कहते हैं। यह यस्य हरिदास से कर्मणा मनसा गिरा निखिलाश्व अप्यवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। जो व्यक्ति हरि का दास हो जाता है, हरि की सेवा करता है, कैसे करता है, कर्मणा मनसा गिरा, अपने कर्मों से, अपने मन से, अपने देह से पूरी तरह से करता है, तो उसे जीवन मुक्त कहते हैं। इस जीवन में रहते हुए भी वो मुक्त पुरुष कहलाता है। ब्रह्मा जी भी प्रार्थना यही करते हैं, पिछले हफ्ते यही हम चर्चा कर रहे थे ब्रह्मा जी की प्रार्थना, जिसमें ब्रह्मा जी ने कहा है, ज्ञाने प्रयासम उदपस्य नमन्ति एव जीवन्ति सन् मुखरिताम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवान मनोभिर ये प्रायसो जित जितो व्यसित स्त्री लोक्याम। ब्रह्मा जी बताते हैं कि हमें ये ज्ञान की बातें त्यागनी चाहिए, तर्क वितर्क करके भगवान को जानना या अपने मनगढ़ंत ढंग से भगवान को जानना या नेति नेति ज्ञान योग की पद्धति से भगवान को जानना, इसको त्यागना चाहिए। अपने स्थान में रहकर ईमानदारी से अपने व्यवसाय को चलाना चाहिए, अपने संसार को चलाना चाहिए, और भक्तों के बीच में रहकर जीवंती सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम भगवान की कथा सुननी चाहिए। और केवल सुननी नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए, हमें पूरी तरह से इनके प्रति सम्मान देना चाहिए। स्थाने स्थिता श्रुतिकताम तनुवान मनोभेर, और श्रवण भी करना चाहिए तन वचन और मन से, अपना पूरा शरीर मन वचन सब भगवान को समर्पित करने चाहिए। हृदवाग वपुर भीर विदधन नमस्ते, अपने हृदय से, अपने वचन से, अपने मन से इन कथाओं को सम्मान करना चाहिए। हम किसी व्यक्ति का सम्मान कैसे करते हैं, मान लीजिए हमारे घर में कोई या मंदिर में कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति आए, हम उनका सम्मान करते हैं, उनको बिठाते हैं, खिलाते हैं, और क्या करते हैं, जब वो बात करते हैं तो हमारा व्यवहार उनके प्रति कैसे होता है, अगर मान लीजिए कि वो कुछ कह रहे हैं हमसे और हम बीच में सो गए, वो हमसे बात कर रहे हैं लेकिन बात करते करते हम सो गए, या वो हमसे बात कर रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और है, तो क्या इसका मतलब हम सम्मान दे रहे हैं उनको? नहीं, क्या कर रहे हैं? अपमान कर रहे हैं। तो ठीक उसी तरह से जब ब्रह्मा जी बता रहे हैं हृद वाग बपुर भीर विदधन नमस्ते, कि हमें कृष्ण कथा को क्या करना चाहिए, हृदय से, मन से, वचन से नमस्ते, नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए। तो सम्मान कैसे दे सकते हैं कृष्ण कथा को? अपना मन देकर, अपना ध्यान देकर, अपना श्रवण, अपनी इंद्रियों को अर्पित करके। ध्यान से जब हम सुनते हैं, ध्यान से हम श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, पढ़ते हैं, नामोच्चारण करते हैं, तो ये है हृदवाग वपुर फिर विदधन नमस्ते। इस तरह से अपने सारे इंद्रियों को, मन को, वचन को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। वैसे कई श्लोक इस तरह के हैं और आचार्य टीका देते हैं कि ऐसे जो व्यक्ति करता है अपने मन को, अपने वचन को और अपने हृदय को, शरीर को भगवान की सेवा में लगाता है, वो भगवान के मन, वचन और शरीर को जीत लेता है। कैसे होता है वो? भगवान के मन को कैसे जीत लेता है? क्योंकि भगवान अपने मन ही मन में हमेशा अपने भक्तों के बारे में ही सोचते हैं। इस तरह से भक्त भगवान के मन को जीत लेता है। इसलिए अम्बरीश महाराज के संदर्भ में भगवान बताते हैं, साधवो हृदय मह्यम साधुनाम हृदय त्वहम मद अन्यत्ते न जानन्ति न हम तेभ्यो मन आगपि। वो कहते हैं कि हे दुर्वासा जी, मुनि जी, जान लीजिए कि मेरे हृदय में हमेशा मेरे भक्त हैं और मेरे भक्तों के हृदय में हमेशा मैं हूं। मत अन्यत ते न जानन्ति, मेरे अलावा वो कुछ और नहीं जानते और उनके अलावा मैं कुछ और नहीं जानता। अर्थात भगवान के मन में भक्त छा गए हैं। जिस तरह से भक्त हमेशा भगवान के बारे में सोचते रहते हैं, उनका चित्त कृष्णमय है, उसी तरह से कृष्ण का चित्त भक्तमय है। इस तरह से अपना मन जब भगवान को दे देते हैं भक्त लोग, तो भगवान उनका मन भक्तों को दे देते हैं। इस तरह से अपना मन समर्पित करने से हम भगवान का मन भी जीत लेते हैं। और अपने वचन जब हम भगवान को समर्पित करते हैं, भगवान के बारे में हमेशा बोलते हैं, तो हम भगवान के वचन को भी जीत लेते हैं। कैसे? क्योंकि भगवान भी भक्तों के बारे में बोलने लगते हैं। भागवत में कितने ही ऐसे वर्णन हैं कि भगवान अपने भक्तों के गुणगान करते हैं कई बार। और चैतन्य महाप्रभु ने तो दिखाया, कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कई बार कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को ऐसे गुणगान की मानो कि उनके 5 मुख हैं, या किसी फलाना और भक्त के गुणगान की मानो कि उनके 100 मुख हैं। तो भगवान अपने भक्तों का गुणगान करना पसंद करते हैं, इससे उनको आनंद मिलता है। जिस तरह से भक्तों को आनंद मिलता है भगवान का गुणगान करना, तो जब कोई भक्त भगवान का गुणगान करता है तो भगवान के वचन को भी जीत लेता है। और जब अपने शरीर को अर्पण करता है भगवान की सेवा में कोई भक्त, तो भगवान के शरीर को जीत लेता है। कैसे? क्योंकि भगवान हमेशा अपने भक्तों के संग में रहना चाहते हैं, इसलिए भगवान स्वयं वहां उपस्थित हो जाते हैं, आते हैं, अपने भक्तों के संग में रहकर उनका निजी संग देते हैं। इस तरह से जो भी भक्त भगवान के लिए करता है, उसी भावना से भगवान भक्त के लिए करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सथैव भजाम्यहम्। जैसे भक्त करता है वैसे भगवान उससे करते हैं। ये है प्रेम का आदान प्रदान। तो कर्मों का फल अर्पण करने का फल ऐसा होता है, कर्म फल अर्पण करने का फल क्या मिलता है कि हम भगवान को जीत लेते हैं। ये प्राय सो चित्त जितो पेशी तेई स्त्री लोक क्या। तो ये केवल कर्म की बात नहीं है, कर्म योग की बात नहीं है। कई बार लोग कहते हैं कि ठीक है आप लोग भक्ति कर रहे हो, लेकिन हम लोग कर्म करने में विश्वास रखते हैं, हम लोग काम करते हैं। इसका मतलब कि भक्त लोग कोई काम नहीं करते, दिन भर सोए रहते हैं, आलसी रहते हैं, ये उनका मतलब है कहना। लेकिन ऐसा नहीं है, भक्ति मतलब कर्म। भक्त लोग भी दिन भर सेवा करते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं, इंद्रियों की सेवा करने के बजाय कृष्ण की सेवा करते हैं। वो अपने सारे कर्मों के फल अर्पण करते हैं भगवान श्री कृष्ण को प्रेम से। ये अंतर होता है तथा कथित बाहर के स्वयं को कर्मयोगी कहलाने वाले में और कृष्ण भक्तों में। यूं ही केवल कोई कर्म करता रहे तो उससे उसकी कोई आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी। लेकिन अगर भगवान की संतुष्टि के लिए कोई कार्य करे तो फिर वो भक्ति कहलाता है। इस तरह से महाराज पृथु यहां उपदेश दे रहे हैं कि अगर आप इस तरह की भक्ति करोगे तो अवश्य आपका जीवन आप सफल कर पाओगे। तो हमें भी ऐसे ही कृष्ण के उपदेश का पालन करना चाहिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। जब तुम युद्ध कर रहे हो हे अर्जुन, तब माम अनुस्मर मेरा स्मरण करते रहो। लेकिन केवल स्मरण नहीं, यह अनु शब्द का प्रयोग किया गया है। अनुस्मर का मतलब क्या है? अनु इस संदर्भ में अनु का मतलब है जो चीज बार बार की जाती है। तो बार बार स्मरण करो हे अर्जुन, ऐसा नहीं कि युद्ध करते समय एक बार स्मरण कर लो और फिर भूल जाओ, नहीं। इसी तरह से दिन भर जब हम कार्य करते हैं, भगवान कहते हैं स्मरण करो, लेकिन कैसे? दिन भर स्मरण करते रहो, नित्य करते रहो, तब हमारे कर्म सफल हो सकते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सर्वेषु कालेषु मतलब हर समय, दिन में, रात में, दोपहर में, हाँ क्लास के समय भी स्मरण करना चाहिए भगवान का। तो ये है भक्ति, ये भक्ति का विज्ञान है, भक्ति की कला है। ये भगवान के मंदिर में आकर, भक्तों के संग में आकर सीखी जाती है। हरे कृष्ण 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 हरे।